किसी कार्य की सफलता के लिए उस कार्य में मातृत्व का होना बहुत जरूरी है और सकारात्मक सोच द्वारा सफलता के सोपान तक पहुंचने के लिए भी मातृत्व का होना आवश्यक है। और 47 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए, 5 सेवा केंद्र संभालते हुए हमारे बीच मंडला से हमारे मातृत्व की ध्वनि ममता दीदी जी हमारे बीच हैं। जोरदार करतल ध्वनि से दीदी का अभिनंदन और स्वागत। सकारात्मक सोच द्वारा सफलता किस तरह मिलेगी दीदी जी हमें बताएंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी ऐसे सुंदर, श्रेष्ठ, पवित्र, पावरफुल वातावरण में बैठ प्यारे बाबा को बहुत प्रेम से याद कर रहे थे। सकारात्मक चिंतन सोच के द्वारा स्वयं को बहुत खुशियों से भरपूर कर बेहद सुख, शांति, आनंद या कहें परमानंद की अनुभूति कर रहे थे। दुनिया में तो सिर्फ आनंद, परमानंद का नाम सुना होगा, लेकिन परमानंद का सुख क्या होता है ये तो सिर्फ हम बाबा के बच्चे ही आनंद परमानंद की अनुभूति प्रैक्टिकल अपने जीवन में करते हैं। कितनी सुखद बाबा की याद है। ईश्वरीय स्मृति, परमात्मा स्मृति से ही हम स्वयं को समर्थ बनाकर सकारात्मक सोच के साथ स्वयं को सफलता के सोपान तक पहुंचाते हैं। प्यारे बाबा के बच्चों का ये जीवन सफल जीवन हो, सफलता को प्राप्त हो, कोई जीवन में असफलता ना आए तो असंतुष्टि भी नहीं हो सकती। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर कितना प्यार, संतुष्टि, हर प्रकार से खुशी से भरपूर किया है। हम सभी 2 साल से संकल्प कर रहे थे बाबा के घर आने का। कोरोना की एक महामारी ने ही माया के रूप में आकर के वार किया। अभी भी आने में मैं समझती हूँ कईयों को दिक्कतें आई हैं, घर से भी कहा गया, परिस्थिति ऐसी चल रही है कहाँ जाएंगे। अभी कोरोना गया नहीं है, कहा ना, लेकिन फिर भी बाबा से इतना प्यार था, कशिश थी, तब तो निश्चय और प्यार के आधार से कशिश से खींच करके बाबा के पास पहुंच गए। अपनी तरफ से कोई व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प आने ही नहीं दिया, तब तो यहां पहुंच पाए। हम मास्टर त्रिकालदर्शी बने हैं, हर कार्य के आदि, मध्य, अंत को जान करके कर्म करने वाले। हमें पता है कि माया अभी एक कोरोना की महामारी के रूप में आई विघ्न डालने, लेकिन माया तो बहुरूपी है और न जाने किस किस रूप से आने वाली है। तो अभी तो बाबा के घर से हमें बुलावा आया है, जाना है, हम जरूर जाएंगे। जिसने अपने जीवन में ये दृढ़ किया, दृढ़ता के संकल्प के आधार से स्नेह प्यार के विमान में उड़कर यहाँ पहुंच गए, ऐसा ही कहेंगे ना। ऐसा ही कहेंगे, सब उड़ के पहुंच गए। सकारात्मक सोच रखा, दृढ़ निश्चय रखा, प्यार निश्चय के कारण उड़ता पंछी बन कहें यहाँ उड़ गए। उड़ के बाबा की गोद में आ गए, बाबा की छत्र छाया में आ गए, बाबा के पास आकर बैठ गए, तो वो सुखद और शांति का, आनंद का अनुभव स्वाभाविक हमें होने ही लगता है। तो संगम युग के ईश्वरीय जन्म जो हमने प्राप्त किया, ईश्वरीय कुल में आए, तो ये ईश्वरीय कुल की स्मृति और भविष्य के सूर्यवंशी कुल की स्मृति, अगर हम ये दोनों ही स्मृति में रहते हैं तो समर्थ बनते हैं। स्मृति से ही समर्थी आती है। जैसे राजपूत जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनको स्मृति दिलाई जाती थी कि आप राजपूत कुल के हैं, राजपूत कुल के ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, और आप भी उसी राजपूत कुल के हैं, तो नशा चढ़ जाता है। योग्य अपने को न समझते हुए भी स्वयं योग्य अपने को देख राजपूत कुल की महिमा करते करते सुनते सुनते स्वयं भी महान बन जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें ईश्वरीय कुल की स्मृति रहती है कि हमें ये ईश्वरीय जन्म प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय कुल में आए हैं, तो स्मृति ईश्वरीय कुल की और भविष्य सूर्यवंशी कुल की, दोनों की स्मृति हमें समर्थ्यवान बनाती है। तो निर्बलता समाप्त होकर कमजोरी समाप्त हो जाती है तो जीवन में सफलता आ जाती है। असफलता हो ही नहीं सकती, स्मृति हमें पावरफुल बनाती है। जैसी स्मृति होती है वैसा ही स्वरूप बनता है। हम अपने भिन्न भिन्न स्वमान और नशे को रोज एक लेकर के ईश्वरीय नशे में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं ना। कई बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी, प्यारे बाबा के सभी बच्चे मैं समझती हूँ, कोई ना कोई स्वमान रोज लेकर के अपनी स्व उन्नति में लगे ही रहते होंगे। तो अगर हमें ये स्मृति रहती है कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव से प्राप्त, हम सभी बाबा के बच्चे शक्ति प्राप्त करने वाले सभी शिव शक्ति हैं, तो शक्तिशाली बन जाते हैं इस स्मृति के आधार से। और स्मृति से हमारा स्वरूप जब शक्तिशाली बन जाता है तो असफलता तो हो ही नहीं सकती, सफलता तो होगी ही। लेकिन इसके बजाय अगर हम ये बार बार कहें हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी। अभी कौन संपूर्ण बना है, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जैसा स्वरूप हम अपना बनाएंगे, स्मृति में रखेंगे, वैसी ही समर्थी आएगी। अभी कोशिश शब्द तो हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं, कशिश खिचावट होनी चाहिए, बाबा के प्यार की कशिश है, कोशिश नहीं है। तो हम बाबा के ईश्वरीय जन्म प्राप्त कर ईश्वरीय कुल में आए हैं, तो ऐसी स्मृति। अब एक होती है केवल साधारण स्मृति और एक होती है पावरफुल स्मृति। जैसे आप देखेंगे कोई जज है, उसको स्मृति तो रहती है सारा समय, जज पने की स्मृति है कि हम जज हैं, लेकिन जब अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्तव्य की सीट पर जब बैठते हैं, उस समय पावरफुल स्वरूप होता है, पावरफुल स्मृति रहती है और कर्तव्य और स्वरूप उसी अनुसार हो जाता है। तो उसी प्रकार हम अगर सदैव ईश्वरीय कुल में की स्मृति में रहेंगे, ये ईश्वरीय जन्म हमें मिला है, हम ईश्वरीय कुल, ब्राह्मण कुल, सबसे ऊंच कुल, चोटी के ब्राह्मण हैं, ऊंच कुल की आत्माएं हैं, और ईश्वरीय कुल वाली आत्माएं सदैव ईश्वरीय सर्विस पर हैं। बाबा के ईश्वरीय कुल वाली आत्माएं ईश्वरीय सर्विस की सीट पर ही हैं। इस ईश्वरीय सेवा की सीट को हमें कभी नहीं छोड़ना है, हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। सीट पर सेट रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा छतर छाया में ईश्वर की रहेंगे, अनुभव करेंगे। हमारा हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कर्म ईश्वरीय सर्विस पर है। बाबा के घर भी साल में एक बार ईश्वरीय सेवा का गोल्डन चांस मिलता है हर जोन को। हमने भी वो गोल्डन चांस प्राप्त करके चांसलर बनना है। हर पल ये स्मृति रहे कि हम ईश्वरीय सर्विस की सीट पर बैठे हैं। चाहे स्थूल कार्य, भोजन बनाते हैं, कोई भी स्थूल कार्य करते हैं, लेकिन उसमें ईश्वरीय संस्कार उसमें भरने होते हैं। बाबा की याद में हम वो कर्म करें, स्मृति में करें कि हम ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं। हम कितनी महान, सौभाग्यशाली, सफलता मूर्त आत्माएं हैं जो बाबा ने हमें चुना है और अपनी ईश्वरीय सेवा के लिए हमें निमंत्रण मिला। हम जरूर जाएंगे और उस सीट पर बैठकर ऐसे सेट होकर चलते हैं, अपसेट नहीं होते और स्वमान में रहते हैं, अभिमान कभी नहीं आ सकता। तो सीट पर रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की जो सबसे मूल प्रिय चीज वो कौन सी है? सबसे प्रिय चीज ब्राह्मणों की कौन सी है? कौन सी है? अवस्था। हमें अपनी अवस्था को बहुत परिपक्व, एक रस, अचल, अडोल बनाकर रखनी है। कभी अपसेट होने नहीं देना, क्योंकि अवस्था जब ठीक रहती है तो हर प्रकार की व्यवस्था भी ठीक रहती है। अवस्था ठीक तो व्यवस्था ठीक। इसलिए अवस्था हमारी सेट रहे उसके लिए हमें ईश्वरीय सर्विस की सीट पर सदैव सेट होकर रहना है। अपने आप को ईश्वरीय सेवाधारी समझकर चलना है तो कोई भी देह अभिमान नहीं आएगा। दुनिया में जो सीट पर बैठते हैं वो तो अल्पकाल के लिए सीट होती है, ऐसा हम बच्चों के लिए नहीं है। हमें तो सदैव ही ईश्वरीय सेवा की सीट मिली है। कहते हैं ऑन गॉडली सर्विस ओनली कहा जाता है, तो ऑन गॉडली सर्विस ओनली है। हमें बाबा की स्मृति दिलाती रहती है, तो श्रेष्ठ स्मृति यही है कि ईश्वरीय जन्म प्राप्त हुआ, ईश्वरीय कुल में आए हैं और ईश्वरीय कुल का नशा और निश्चय ये जरूर हमारे हर कर्म से, चलन से, व्यवहार से नजर आना चाहिए। जो जैसे ऊंचे कुल के होते हैं तो उतनी रॉयल्टी उनमें नजर भी आती है, तो हम भी इतने ऊंचे ईश्वरी कुल में आए हैं तो वो जरूर हमें, हम आत्माओं के द्वारा झलकेगी, तभी ईश्वर का नाम, ईश्वरी कुल का नाम हम रोशन कर सकेंगे। दुनिया में भी कहा जाता है ये मेरे कुल का दीपक है, कुल का नाम रोशन करेगा। तो हम भी बाबा के कुल दीपक हैं, ईश्वरी कुल का नाम हमें रोशन करना है। ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई चलन, ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए जो ईश्वरी कुल का नाम बदनाम हो। दूसरी बात, संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा प्यारे बाबा के द्वारा हम बच्चों को प्राप्त होता है, वो श्रेष्ठ वर्षा कौन सा है? वो संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा है अति इंद्रिय सुख, सदा काल की प्राप्ति का, अल्पकाल की प्राप्ति नहीं। भक्त लोग तो अल्पकाल की प्राप्ति में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन हम सदा काल की प्राप्ति करने वाली, अति इंद्रिय सुख की सदा काल की प्राप्ति, ये वर्षा हमें संगम युग पर प्राप्त होता है। तो संगम युग का वर्षा, अति इंद्रिय सुख जिसका बहुत समय से गायन हम सुनते आए हैं, अति इंद्रिय सुख अगर पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो वो गोप गोपियां कौन है? हम सभी हैं ना। इन इंद्रियों से परे का आत्मिक सुख, अति इंद्रिय सुख में डूबे हुए, उस ईश्वरीय नशे में, मस्ती में मस्त रहने वाली हमने हमारी मीठी प्यारी दादियों को देखा है, कितने ईश्वरीय रस में सारो बार, ईश्वरीय नशे में डूब, अनेक प्रकार की शिक्षाओं से हमें सजाया है। दादियों की जीवन ही हम बच्चों के लिए प्रेरणाएं हैं। ब्रह्मा बाप की बातें हम सभी ने सुनी, लेकिन दादियों को तो प्रैक्टिकल देखा। पूरा ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप बना, कैसे बना प्रैक्टिकल इन आंखों से देखा। दादियों को फरिश्ता स्वरूप बनते देखा, फरिश्ता सो देवता स्वरूप में आ गईं, हम सभी अपने इन आंखों से प्रैक्टिकल देख रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रेरणा उरत दादियों से हम सीखकर उनके समान अपने जीवन को बनाना, वो ही इंद्रिय से परे के अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, इस वर्षे को प्राप्त करना है। प्यारे बाबा ने तो हमें सब कुछ विल कर दिया, वर्षा दे दिया, हम वारिस बच्चे हैं। वारिस को तो बाप सब कुछ अपना वर्षा दे देता है, और जो वारिस नहीं होते हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ देकर खुश कर देते हैं, और वारिस को तो पूरा देते हैं ना, पूरा विल कर देते हैं ना। तो बाप ने तो हमें सब कुछ विल कर दिया, अपना खजाना सब कुछ वर्षा दे दिया, विल कर दिया। तो जब सब कुछ बाबा ने विल कर दिया, हम वारिस बच्चों को विल पावर आ गई, हमारे एक एक संकल्प विल पावर वाला हो गया, शक्तिशाली हो गया, सिद्ध होने वाला हो गया, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो गई। जो हम सुनते आए हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, बैठते थे तो सारे संकल्प सिद्ध हो जाते थे, वो कब की बात है? संगम युग की ही तो बात है। अभी हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होंगे। और बाबा ने हमें कहा है कि जो भी श्रेष्ठ संकल्प करेंगे वो मैं तुम्हारे पूरे करूंगा। अभी देखो बाबा के घर आने का आप सभी ने संकल्प किया, भले विघ्न तो आए होंगे आने में, आते ही हैं अच्छे कार्य में, लेकिन पूरा किया ना बाबा ने। जिसने संकल्प श्रेष्ठ दृढ़ किया होगा वो जरूर बाबा के घर पहुंचेगा। श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा बाप करता है, खराब और भ्रष्ट संकल्प को माया पूरे करती है। तो अभी संकल्पों की सिद्धि का समय चल रहा है, तो बाबा हमारे सब संकल्पों को पूरा करता है। सब कुछ उसने विल किया, विल पावर वाला बनाया, सारी प्रॉपर्टी हमें दे दी, खजाना दे दिया, विल कर दिया, वर्षा दे दिया। तो एक दान पुण्य मिलना और एक प्रॉपर्टी मिलना, दान पुण्य तो कभी कभी कुछ कुछ प्राप्त होता दान पुण्य के रूप में, लेकिन वर्षा तो फुल प्राप्त होता है ना, अपना हो गया ना, वो तो अपनी प्राप्ति कहलाती है ना। तो बाप ने जो हमें वर्षे रूप में दिया, जो प्रॉपर्टी दी, बाबा ने तो दे दी, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि उस प्रॉपर्टी को, उस वर्षे को, उस खजाने को, उस प्राप्ति को हमने अपना बनाया है, अपना बनाना है। प्रॉपर्टी तो मिल गई, लौकिक में भी बाप बच्चों को प्रॉपर्टी दे देता है, कई ऐसे ही खा पी के उड़ा देते हैं, कई उसी को और बढ़ा करके फिर दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी देने के लायक बन जाती है, इतनी प्रॉपर्टी को बढ़ा देते। तो बाबा ने हमें प्रॉपर्टी दी, वर्षा दिया, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी को अपना बनाने में सफल हुए, तब हम सफलता के सोपान तक पहुंचेंगे। अपने इस ब्राह्मण जीवन को हमें सफल बनाना है, क्योंकि माया बहु रूपिया है, माया जीत जगत जीत हमें बनना है। माया किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन हमें उस पर विजय प्राप्त कर सफल बनते हुए सफलता के सोपान पर पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ब्रह्मा बाप एक था, दुनिया अलग थी, ब्रह्मा बाप शुरू में एक ही था। कितना समस्याओं का, परिस्थितियों का, संकट का सामना करके एक अकेले ने बीज बोकर वट वृक्ष तैयार किया। उसके बाद हमारी दादियों को ऐसा तैयार किया, दादियों के जीवन से प्रेरणा लेकर के उन्हें सम्मुख देखते देखते ही हम अपने जीवन को उनके समान बना सकेंगे। उनकी दी हुई पालना, उनकी शिक्षाएं आप सभी ने अनुभव की है। हमारी दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि जी कैसे फरिश्ता बनी, और प्रैक्टिकल में अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने, हमारी दादी रतन मोहिनी जी अभी प्रैक्टिकल हम आंखों से देख रहे हैं, कितनी इस उम्र में भी आज हमारे सामने आकर हमें सौगात देकर, दृष्टि देकर, शिक्षा देकर आज भी पालना कर रही हैं। प्रेरणा स्रोत है दादी, उनको मात्र देखकर, उनकी दृष्टि प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को उनके समान बना सकते हैं। उन्होंने बाप की प्रॉपर्टी को अपना इतना बनाया है दादियों ने, तब तो आज वो हम सभी को दे सकी। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसके पास पहले खुद हो। खुद की अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो वो दान पुण्य कहां से करेगा? तो दान पुण्य करने के लिए, औरों को आप समान बनाने के लिए, औरों को सर्व खजानों से संपन्न बनाने के लिए, जब पहले खुद संपन्न होंगे, खुद की प्रॉपर्टी पहले अपनी बनाई हुई होगी, तब तो दान पुण्य कर सकेंगे। ठीक बात है ना? तो ऐसे बाबा ने हमें प्रॉपर्टी दी, वर्षा दिया, लेकिन हम उसे अपना कैसे बनाए? जब तक अपना नहीं बनाया ना, तब तक हम दान पुण्य नहीं कर सकते। औरों को आप समान नहीं बना सकते। और बाबा ने क्या कहा? ऊंच पद किसको मिलेगा? जो औरों को आप समान बनाएगा। खुद बनाना है अपने को बाप समान, और औरों को बनाना है ऐसे ही आप समान नहीं बना लेना, पहले खुद को बनाना पड़ेगा बाप समान, है ना? तो खुद को बाप समान बनाएंगे तो बाप पसंद बनेंगे, बाप के प्यारे वारिस बच्चे होंगे, तब तो वर्षे के अधिकारी होंगे, बाप हमें सब कुछ बिल करेगा, क्योंकि सच्ची दिल पर ही साहेब राजी होता है। जब सच्ची दिल हमारी होगी, सच्चा पुरुषार्थ हमारा होगा, तब तो सच्ची दिल पर साहेब राजी होकर अपनी प्रॉपर्टी देगा, सब विल करेगा, पूरा वर्षा देगा वारिस को, है ना? बाकी को तो थोड़ा थोड़ा देकर कुछ कर देगा जो वारिस नहीं होगा। तो हमें बाबा ने प्रॉपर्टी दी, वारिस समझकर वर्षा दिया, यहां तक हम पहुंचे अगर, तो अब उस प्रॉपर्टी को अपना बनाना है। तो अपना कैसे बनाएंगे? दादियों ने कैसे बाबा की प्रॉपर्टी को अपना बना लिया? बाप समान बनकर के अपने समान औरों को बनाने की प्रेरणा स्रोत बन गई। इतना हम सबको शिक्षाओं से सजाया, इतना वातावरण को, इतना पावरफुल, मात्र उपस्थित रहने से आपने अनुभव किया होगा, सभा में दादी पहुंची नहीं कि वातावरण में और पावरफुल, और शक्ति, और पावर आ जाती है। एक खुशी तो इतनी छा जाती है कि खुशी में गद गद हो जाती है। ऐसी बाप समान बनी है ना दादियां, पुरुषार्थ से सारे बाप की प्रॉपर्टी को अपना बना लिया है, और अपने बना करके अपने खजाने से फिर हम सबको दिया। तो हमें भी बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाना होगा। तो दादियों ने कैसे बनाई प्रॉपर्टी को अपनी? मनन के आधार, मनन चिंतन के आधार हम प्रॉपर्टी को अपनी बनाते हैं। मनन चिंतन में मस्त रहने वाले के पास किसी भी रूप से माया आने की कोशिश करे, असफल हो जाएगी, आ ही नहीं सकती, और हम सफलता मूरत बन जाएंगे। असफल हो ही नहीं सकते। मनन में मस्त रहने से, बिजी रहने से माया आएगी तो देखेगी ये तो बिजी है, तो वापस लौट जाएगी। दुनिया में भी अगर आप किसी ऑफिसर से मिलने जाएं और देखें वो ऑफिस में बहुत बिजी है, तो आप अंदर जाने की, मिलने की कोशिश करेंगे क्या? सोचेंगे बाद में आएंगे, अभी बहुत बिजी है। तो माया को भी हम इतना बिजी नजर आएंगे मनन चिंतन में, तो माया लौट जाएगी, फिर वार नहीं कर सकती, विदाई लेने आएगी भी तो विदाई लेने आएगी, सत्कार करने आएगी, वार करने नहीं आएगी। समझा? तो मनन चिंतन के आधार से हम देखते हैं। सबने सुना होगा, आज दादी जानकी जी को सभी ने देखा। दादी जानकी जी ने बाबा से पूछा था कि बाबा मैं कैसे उन्नति को प्राप्त करूं, उसके लिए क्या करूं। साकार बाबा ने कहा था 10-12 बार मुरली पढ़ो, सबको पता है। तो बाबा ने जितना कहा उससे भी ज्यादा मुरली पढ़ती, और मुरली के ऊपर मनन चिंतन। मनन चिंतन इतना करते करते मस्त फकीर बन गई, मस्त मोला। मनन चिंतन के आधार से ज्ञान सागर की बच्ची मास्टर ज्ञान सागर ज्ञान नदी बन गई। सभी ने प्रैक्टिकल देखा, दादी की शिक्षाएं जो हम सभी को सजाया है दादी ने। मनन चिंतन, आज हम मुरली भरे बाबा की सुनते हैं, समझते भी हैं, हमारे लिए अमृत धारा है। मुरली ही हमारे जीवन का आधार है, मुरली बिना हम नहीं रह सकते, नियम से सुनते भी हैं। लेकिन चिंतन मनन हम कहां तक कितना करते हैं, ये अपने आप से पूछें। स्वनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है, स्वयं स्वयं की चेकिंग करना, स्वयं का चिंतन करना बहुत जरूरी है, तब हम स्व उन्नति कर सकते हैं। बाबा ने इस ईश्वरीय जन्म में ईश्वरीय कुल की आत्माओं को जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं संयम श्रेष्ठ विधियां बताई हुई हैं, श्रेष्ठ श्रीमत उसके लिए दी हुई हैं, उन सभी का अगर हम पालन करते हुए चलते हैं तो जीवन में बहुत सफलता का अनुभव करते, आगे सफलता के सोपान तक पहुंचते हैं। अपनी स्व उन्नति से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में भी सहयोगी बन सकते हैं। तो मनन चिंतन बहुत जरूरी है। मनन चिंतन के आधार से ही हम बाप की दी हुई प्रॉपर्टी को, वर्से को अपना बना सकते हैं। तो मनन चिंतन करना माना अंतर्मुखी, और जो अंतर्मुखी होता है तो बाह्यमुखी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, अंडरग्राउंड। जैसे दुनिया में भी जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो बॉम्ब्स का असर नहीं होता है। तो हम भी जब अंतर्मुखता की गुफा में चले जाएंगे, मनन चिंतन के आधार से अंतर आत्मा में झांक करके अपने अंदर की कमियों को हटाकर, अपने अंदर की शक्तियों को, अंतर्निहित शक्तियों को जागृत अवस्था में लाएंगे, तो क्या होगा? बाह्य मुक्ता की बातों का असर नहीं होगा, माया के किसी भी रूप का, किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बाबा की पढ़ाई के आधार से हम सभी जानते हैं कि अपने को इतना परफेक्ट बनाना है कि स्वरूप हमारा चेंज होकर देवता स्वरूप बन जाए। उसके पहले फरिश्ता स्वरूप बनाना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो अभी तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन, बाप की प्रॉपर्टी खजाना जो मिला है उसका चिंतन से स्वरूप बनाना होता है। अभी हम सोच सोच के देवता स्वरूप बना रहे हैं, लेकिन जब हम सतयुग में पहुंच जाएंगे, देवता स्वरूप में होंगे, तो वहां हमें सोचना थोड़ी पड़ेगा कि हम देवता स्वरूप में हैं। वहां तो ऑटोमेटिकली चलन व्यवहार ये वो सब देवताई जीवन हो जाएगा। अभी वो जीवन तक पहुंचना है, वो स्वरूप प्रैक्टिकल बनाना है, तो अभी सोच सोच के स्वरूप तैयार कर रहे हैं। तो बाबा के बच्चों का नकारात्मक चिंतन तो सदा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए, हो ही गया होगा, व्यर्थ चिंतन समाप्त। इतना ज्ञान, इतना खजाना बाबा ने दिया, और रोज रोज नया नया मुरली से हमें प्राप्त होता है, उसी का चिंतन करते 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 उसी में मस्त हो जाना है। इतना ईश्वरीय रस में डूबे रहना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्मा को इविल सोर्स का, इधर उधर का कोई इफेक्ट डिफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा। इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। आगे मालूम है ना कैसी कैसी परिस्थितियां आने वाली हैं, क्या क्या वार होने वाला है, पर हम पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारे अंदर डिफेक्टेड हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो डिफेक्ट रह गए हैं बाबा की अनुसार, बाबा के बताए हुए समझाइश के आधार से, ज्ञान के आधार से, अपनी कमियों को, हमें डिफेक्ट को हटा देना है। तो डिफेक्ट हटेंगे, कमियां खत्म होंगी, कमजोरियां खत्म होंगी, तो इफेक्ट नहीं होगा और परफेक्ट बनते जाएंगे। कुछ छोटी छोटी सी अपने जीवन में प्रतिज्ञाएं अपने आप अपने लिए लें, मुझे ये करना है, ऐसे चलना है, सुबह से लेकर रात तक मुझे कैसे कैसे चलना है, छोटी छोटी सी रोज रोज अपने आप से दृढ़ता लेते हुए, कहते हैं ना दृढ़ता सफलता की कुंजी है। तो छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं के आधार से भी हम अपने आप को परिपक्व बना सकते हैं। प्रतिज्ञाएं परिपक्व बनाती है, दृढ़ता सफलता को प्राप्त कराती है। तो इस प्रकार ईश्वरीय जन्म में ईश्वर द्वारा जो हमें वर्षा प्राप्त होता है, उस वर्षे को अपना बनाएंगे मनन के आधार से, तो अपनी प्रॉपर्टी जब बन जाएगी तो हम दान पुण्य कर सकेंगे। खुद बाप समान बन औरों को आप समान बना सकेंगे। तो सुरक्षित अंतर्मुखता की गुफा में रहकर सेफ और सुरक्षित जीवन हमारा हो जाता। दूसरी कौन सी स्मृति बताई? सूर्यवंशी कुल की स्मृति, संगम युगी ईश्वरी कुल की स्मृति, और दूसरी भविष्य के सूर्यवंशी कुल की स्मृति। सूर्यवंशी राज्य कैसे प्राप्त किया, क्या क्या किया, किस शक्ति के आधार से प्राप्त किया, वो भी हम संगम युग पर कर रहे हैं। सूर्यवंशी कुल में हमें जाना है, तो ईश्वरीय कुल और भविष्य का सूर्यवंशी कुल, दोनों ही कुल की स्मृति हमें समर्थ बनाती है। जितना हम अपने आप को स्मृति के आधार से समर्थ बनाते जाते हैं, तो व्यर्थता दूर होती जाती है। कोई भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, इन सब से परे ईश्वरीय शान में, ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्मा, शान में रहने वाला कभी परेशान नहीं होता। जो व्यर्थ की बातों को परे करता वही शान में रह सकता, स्वमान में रह सकता, या तो स्वमान या तो अभिमान। तो हमें अनजान नहीं रहना है, सूक्ष्म के भी अभिमान को चेक करके, उसे दूर करके, रोज नए नए स्वमान अपने आप को दे करके, स्वमान की सीट पर अपने आप को रोज बिठाना है। आज भी दादियां हम सभी के लिए हर प्रकार से शिक्षाओं से सजाने के कार्यक्रम बनाते ही रहते हैं। बाबा मिलन में हम आते हैं, भट्टियों में आते हैं, बाप समान बनी हुई दादियां और दादियों के समान बनी हुई हमारी बड़ी दीदियां भी हैं जो भट्टी में आते हैं, क्लासेस करते हैं, लाभ लेते हैं, वो अनुभव करते हैं कि बाप समान हमें पालना, दादियों समान हमें पालना मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। क्योंकि दादियों ने कर्तव्यों की विधि और संकल्पों की सिद्धि दोनों ही प्राप्त की है, प्रैक्टिकल में देखा है। कार्य तो सब करते हैं, कर्तव्य तो सभी करते हैं, इस कर्म क्षेत्र के ऊपर कर्म के बिना तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन उसकी विधि नहीं आती। लेकिन कर्तव्य करने की भी विधियां, सही विधि क्या है, सही कर्तव्य कैसे करें, उस यथार्थ विधि को जो विधि पूर्वक कार्य करते हैं उनको अपने जीवन में सिद्धि सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि है, वो भी यहां से ही शब्द निकला है, विधि सिद्धि को उन्होंने रिद्धि सिद्धि कर दी। तो दुनिया में रिद्धि सिद्धि चमत्कार है, लेकिन वास्तव में विधि की सिद्धि, अल्प प्रकार अल्प ज्ञानी ही रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं अल्पकाल की। तो हम बच्चे विधि के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या, सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं क्या, सफलता के सोपान पर नहीं पहुंच सकते हैं क्या? अवश्य। प्यारे बाबा ने अपना बच्चा बनाकर, ईश्वरी विद्यार्थी बनाकर, हर प्रकार की विद्याओं से, शिक्षाओं से, विधियों से हमें सजाया है। उठना कैसे, सोना कैसे, पूरे दिन की दिनचर्या कैसे विधि पूर्वक चलानी है, वो सब हम ब्राह्मण आत्माएं जानती हैं। दादियां हमें यही कहती हैं, मधुबन की जो दिनचर्या है सुबह से शाम तक की, उसी दिनचर्या को अगर हम अपने स्थान पर भी अगर चलाते हैं तो समझो हम मधुबन निवासी हैं। मधुबन के नाम से ही सबको नशा चढ़ जाता है ना, मधुबन निवासी है। मधुबन आने का जब टाइम होता, ट्रेन की टिकट बन जाती है, वो खुशी उमंग इतना आता है कि स्थिति अवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, खुशियां वहीं उसी स्थान से ही आ जाती है। वो खुशी उमंग लेकर जब हम बाबा के घर आते हैं तो उमंग खुशी हमें पुरुषार्थ कराती है, क्योंकि हम ब्राह्मणों की जो श्वास है वो, तो क्या कहा बाबा ने, खुशी है। खुशी है तो ये ब्राह्मण जीवन है। खुशी, उमंग, उत्साह के पंख हमें उड़ाते हैं, सफल बनाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ के आधार से हम अपनी ऊंच मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ईश्वरीय संतान बनकर, ईश्वरीय कुल में आकर, ईश्वरीय रस में सारोबार होकर, ईश्वरीय नशे में न रहें, तो ईश्वरीय कुल का नाम रोशन कैसे करेंगे। सदैव ईश्वरीय नशे में, कहते ना कोई नशा चढ़ा के रखना है, दुनियावी व्यर्थ के नशे नहीं चढ़ाने हैं। सबसे श्रेष्ठ नशा है नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा। वो चढ़ता किसको है, जो ईश्वरीय रस, ईश्वरीय प्यार जिसने अनुभव किया है। ईश्वरीय रस से सारोबार जो होता है, ईश्वरीय आकर्षण में आकर्षित जो रहता है, उसे माया भी, कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। माया भी कोई भी रस अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो अपने आप से पूछें, हम अपने को ईश्वरी रस में सारोबार समझते हैं, तब हमारा जीवन, हमें जब अपने आप को प्यारा लगेगा, तब दूसरे भी अनुभव कर सकेंगे। आज सभी जो गुलाब जामुन खाते हैं, अगर वो रस से भरपूर ना हो तो सूखा अच्छा लगेगा क्या? नाम से केवल पसंद आता है सबको, लेकिन अगर खोखला हो तो अंदर तक सारोबार हो तो ही अच्छा लगता है। तो हमारा ये ईश्वरीय जीवन स्वयं को भी प्यारा, औरों को भी प्यारा तभी लगेगा जब अंदर तक जिगरी प्यार, सच्ची दिल ईश्वरीय रस में डूबे हुए रहेंगे, ईश्वरीय प्यार में, ईश्वरीय प्राप्ति में, ईश्वरीय नशे में रहेंगे। खुद भी खुद को प्यारे लगेंगे। अगर हम ईश्वरीय संतान बनकर ईश्वर की दी हुई शिक्षाओं से अपने को नहीं सजाते, जो विधियां, जो श्रीमत हमें मिली हुई है, उस पर नहीं चलेंगे तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। वो तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, पर हमें तो अपने जीवन को ही चमत्कारी बनाना है ना, तब तो बाप की प्रत्यक्षता हम अपने जीवन से कर सकेंगे। यहां तो विधि सिद्धि का चमत्कार है, दुनिया में रिद्धि सिद्धि चमत्कार है, यहां विधि की सिद्धि है। तो हमारा जीवन चमत्कारी बन जाएगा, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। तो हमें ऐसे ही चलन चलनी है, ऐसा ही जीवन बनाना है जो दूसरों को प्रेरणा देने के लायक बन सके, औरों को आप समान बना सके, तभी ऊंच पद की प्राप्ति होगी। तो बाप समान बनने के लिए बाप की आज्ञा को, बाप की शिक्षा को हमें अमल में लाना होगा। रोज रोज बाबा मुरली के द्वारा हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाते हैं। तो हम महावाक्य सुनते भी हैं, कहते हैं ना भगवान के महावाक्य हैं। हर एक के वाक्य को महावाक्य नहीं कहा जाता, जो हमारे जीवन को महान बनाए वही महावाक्य। तो बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, सुनते सुनते ही हमारा जीवन महान, महान माना दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। अगर हम उसको सुनकर मनन करके अपना नहीं बनाएंगे तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकेंगे, दान पुण्य नहीं कर सकेंगे, औरों को कुछ दे नहीं सकेंगे। रोज बाबा से जो हम बच्चों को ज्ञान का खजाना मिलता है, उस खजाने को हमें मनन चिंतन के आधार से अपना बनाना है और अपना बनाकर फिर बांटना है सारे दिन, औरों को भी देना है। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है, वो जरूर दूसरों को करना है। इसलिए दीप दीप से जब जलता है तब दीप माला तैयार होती है। जो सभी अभी दीपावली मना के आए हैं, दीपक जलाया, लेकिन सभी ने ज्ञान तो सुनाया होगा, सबको समझा भी होगा खुद ने प्रैक्टिकल कि हमारा आत्मा रूपी दीपक जगमगाया या नहीं। दुनिया में कहते हैं अरे दिवाली तो आई है, लक्ष्मी तो आई नहीं, दिवाली तो आके गई, लक्ष्मी जी तो आई नहीं, फिर हम क्या समझाते हैं हमको। कहते मिट्टी के दीवे घर घर जलेंगे तो दीपावली पर लक्ष्मी जी आएंगी, वो भी जला के देख लिया, फिर लाइटिंग भी कर ली, सब कर ली, नहीं आई। वो तो हम बच्चे जानते हैं, बाबा ने आकर हमारे आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से जगमगाया, फिर हमने औरों को ज्ञान सुनाया, ज्ञान घृत देकर दीपक से दीपक जलाया, तो दीपमाला तैयार हुई। फिर प्रैक्टिकल में इस धरा पर लक्ष्मी जी आएंगी। ओम शांति, ओम शांति।